परमेश्वर के द्वारा निर्धारित सात युग। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 वचन 1 से 17। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन सात मुहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। हां, मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया था कि पृथ्वी पर से मैल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते हुए सुना, दिनार का सिर भर गेहूं और दिनार का तीन सिर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि न करना। जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते हुए सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की एक चौथाई पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। जब उसने पांचवी मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वाले से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा? उनमें से हर एक के श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। जब उसने छठवीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हो। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गए। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। विवरण। वचन एक। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन सात मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना, आ। यह वचन हमें बताता है कि यीशु पिता से प्राप्त पुस्तक की पहली योजना को खोलता है जो मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर की पूरी योजना को दर्ज करता है। वचन दो। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। परमेश्वर की पहली मुहर मनुष्य जाति को पाप से छुड़ाने की परमेश्वर की योजना के रूप में और इस योजना की विजय के रूप में यीशु मसीह में पानी और आत्मा के सुसमाचार की स्थापना की बात करती है। परमेश्वर पिता की योजना मनुष्य जाति को उनके पापों से बचाने के द्वारा उन्हें अपने लोग बनाने की यीशु मसीह में पानी और आत्मा के सुसमाचार के साथ शुरू हुई, अर्थात यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू के माध्यम से मनुष्य जाति के पाप से छुटकारे के साथ। परमेश्वर ने पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा आत्माओं को संसार के सभी पापों से छुड़ाया है, और जब हम अभी बोल रहे हैं तब भी वह ऐसा करना जारी रखता है। यह पहली योजना है जिसे परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए निर्धारित किया है। परमेश्वर की यह पहली योजना यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने, उनके बपतिस्मा लेने, सूली पर चढ़ाए जाने और पुनरुत्थान के माध्यम से मनुष्य जाति के उद्धार के लिए है। सफेद घोड़े का यह युग सुसमाचार के धर्मी युद्ध में परमेश्वर की विजय को दर्शाता है, जिसे उसने मनुष्य जाति को उनके सभी पापों से छुटकारा दिलाने के लिए पूरा किया। यह हमें यह भी बताता है कि पानी और आत्मा का सुसमाचार विजयी होता रहेगा। वचन तीन और चार। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया था कि पृथ्वी पर से मैल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। यह हमें बताता है कि परमेश्वर द्वारा निर्धारित दूसरे युग के दौरान संसार शैतान की दुनिया में बदल जाएगा, जहां लाल घोड़े के दिखने का मतलब है कि दुनिया शैतान के अधीन हो जाएगी। शैतान इस युग में युद्ध लाया है, संसार की शांति छीन रहा है। उसकी वजह से दुनिया को दो विश्व युद्धों से गुजरी। इसके परिणाम स्वरूप अनगिनत लोगों ने अपनी जान गंवाई और जो बच गए वे अनिश्चित टूटी हुई शांति में जिए। अब भी दुनिया भर के राष्ट्र और राज्य एक दूसरे पर अविश्वास करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं, जिससे कई जगहों पर शांति भंग होती है और यह युग युद्ध और नरसंहार का युग है। वचन 5 और 6, जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना, आ, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते हुए सुना, दिनार का सिर भर गेहूं और दिनार का 3 सिर जो पर तेल और दाखरस की हानि न करना। परमेश्वर जिस तीसरे युग की बात करता है वह है काले घोड़े का युग, मनुष्य जाति के लिए भौतिक और आत्मिक अकाल का युग। आज पूरी दुनिया में बहुत से लोगों को उनके आत्मिक अकाल के कारण बचाया नहीं गया है और कई लोग शारीरिक भुखमरी से मर भी रहे हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हम अब इस तीसरे युग में जी रहे हैं। इस युग के बीतने के साथ पीले घोड़े का युग आ जाएगा। वचन 7 और 8, जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते हुए सुना, आ, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की एक चौथाई पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। परमेश्वर द्वारा निर्धारित चौथा युग पीले घोड़े का युग है। बाइबल हमें बताती है कि यह इस अवधि के दौरान है कि मसीह विरोधी अपनी गतिविधियों को शुरू करेगा और यह युग संतों के लिए शहादत का युग भी होगा। यह वो समय है जब मसीह विरोधी सच्चे विश्वास के संतों को लूटने के लिए उन लोगों को सताएगा और मार डालेगा जो उसकी आराधना नहीं करते हैं या उसकी छाप प्राप्त नहीं करते हैं। तब से संसार 7 तुरियों की विपत्तियों की दुर्दशा में आ जाएगा। इस समय संतों की शहादत अपरिहार्य है। वचन 9 से 11, जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी है वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा? उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। परमेश्वर का 5वां युग संतों के पुनरुत्थान और रैप्चर का युग है। इस युग के बाद 1000 साल के राज्य की शुरुआत होगी। यह भाग हमें बताता है कि हम सभी को शहादत, पुनरुत्थान और रैप्चर में विश्वास करना चाहिए जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, और हमें नए स्वर्ग और पृथ्वी में अपने विश्वास और आशा से जीना चाहिए जिसका परमेश्वर ने हमसे वादा किया है। वचन 12, जब उसने 6वीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। परमेश्वर का 6ठा युग परमेश्वर द्वारा बनाई गई पहली दुनिया के विनाश का युग है। यह वो समय है जब 7 कटोरी की विपत्तियां दुनिया की ऊपर उतरेगी, जब सूरज, चांद और तारे अपना प्रकाश खो देंगे और पृथ्वी भूकंप से पानी के नीचे डूब जाएगी। वचन 13, आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। इस 6ठे युग के दौरान परमेश्वर द्वारा बनाए गए ब्रह्मांड का विनाश 7 कटोरों की विपत्तियों से होगा। जैसे ही आकाश के तारे गिरेंगे और पृथ्वी पर पलट जाएंगे, संसार में एक बड़ा भ्रम फैल जाएगा। वचन 14, आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गए। यह वचन हमें बताता है कि जब 7 कटोरे की विपत्तियां डाली जाती है तो आकाश अदृश्य हो जाएगा जैसे कि एक पुस्तक को समेटा जा रहा हो, और सभी पहाड़ों और द्वीपों को उनके स्थानों से हटा दिया जाएगा। आपदाएं जो पृथ्वी के टूटने वाले परिवर्तनों का संकेत देती है, जो दुनिया की भौतिक संरचना को बदल देगा। वचन 15, तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे। 6ठी मुहर के इस युग के दौरान जब परमेश्वर 7 कटोरों की विपत्तियां डालेगा तो इस पृथ्वी पर जो मेमने के क्रोध से भय से नहीं कांपेंगे उनमें से कोई भी जीवित नहीं रहेगा, ना ही राजा और ना ही शक्तिशाली। वचन 16, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। परमेश्वर का क्रोध इतना अधिक होगा कि सारी मनुष्य जाति भय से कांप उठेगी। यह पहली और आखिरी बार होगा जब पूरी मनुष्य जाति भय से त्रस्त होगी। वचन 17, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है? जब सात कटोरों की विपत्तियां डाली जाएगी तो हर कोई चाहे कितना भी शक्तिशाली या मजबूत क्यों ना हो, परमेश्वर के क्रोध से उन पर आने वाली बड़ी आपदाओं के डर से कांप उठेगा। ऐसा कोई नहीं है जो बिना भय के परमेश्वर के प्रकोप के सामने खड़ा हो सके। तो सातवां युग क्या है? परमेश्वर द्वारा निर्धारित सातवां युग वह युग है जिसमें संत हजार साल के राज्य में रहेंगे, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बाद होगा, जिसमें वे हमेशा के लिए रहेंगे।